ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ
ಜಯ ಬೋಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ನಿಯಮ ಸಾಗರಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಬೋಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ಋಷಭ ಸಾಗರಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಮುನಿ ಸಂಘ ಕಿ ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್ ನಮೋಸ್ತು
धर्म पाठ में से तीसरा प्रश्न का उत्तर समझ रहे थे। धर्म किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसे करने से क्या लाभ होता है, एक प्रश्न के अंतर्गत तीन प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया और हमने उसको यदि जीवन बना लिया तो सीधा ही जैनत्व की उपलब्धि अपने जीवन में हो सकती है। सीधा ही हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का जागरण हो सकता है। सीधा ही अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। सीधा ही अपने जीवन में प्रारंभिक दशा में किस तरह से हम चले इसका दिशाबोध हो सकता है और उस दिशाबोध के अनुसार यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो वे कदम सम्यक्त्वाचरण चारित्र के योग्य माने जा सकते हैं। अतः इसी प्रश्न के उत्तर को जीवन बनाने के लिए हम सब यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं। आत्मकल्याण यहीं से प्रारंभ होता है। यही कारण है धर्म पाठ सर्वप्रथम रखा गया है। संसारी प्राणी को अनादिकाल से सन्मार्ग की उपलब्धि नहीं हुई है। सन्मार्ग नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, यदि यह सोचते हैं तो पता चलता है कि उसने जिनवाणी का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया है, न सोचा है, न चिंतन किया है, न कुछ उस तरफ दृष्टि ही रखी थी। जो भी धर्म के नाम से करते आए वह सब अनुकरणात्मक करते चले आए। अनुकरण देखा देखी होता है, पर का देखा देखी होता है, दूसरा जो करता है वही करने से धर्म हो जाएगा, ये भरोसा रख कर के संसारी प्राणी सीधा मार्ग पकड़ लेता है, सरल मार्ग पकड़ लेता है, अनुकरण का मार्ग पकड़ लेता है। किंतु जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म विचारक धर्म है, एक वैज्ञानिक धर्म है, एक तर्कपूर्ण और वैचारिक दृष्टिकोण से उसे स्वीकार करके जब हम विवेकपूर्ण जीवन जीने की कला को हासिल करते हैं जीवन में, उस समय जैन धर्म की शुरुआत अपने जीवन में होती है। तब तक तो हम, ये हो सकता है कि हम अनुकरणवाद से उसका बाहरी बाह्य आचरण कर लेते हैं। बाह्याचरण हमारे जीवन में आ जाता है और यह बाह्याचरण अनुकरण के तौर पर हमारे जीवन में जीवित रहता है। जब तक ऐसा आचरण रूप अनुकरण रूप धर्म जीवित रहता है तब तक हमारा उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, क्योंकि कोई भी क्रिया अनुकरण मात्र से वह सार निचोड़ दे नहीं सकता। जीवन में एक रस आता है, एक आनंद आता है, एक अनुभूति मिलती है, वो केवल अनुकरण करने से नहीं मिलती। अतः ये कहना चाहिए कि अनुकरणवाद भी जैन धर्म नहीं है। जैनत्व की क्रियाएं केवल क्रियाएं, उसके पीछे न विवेक है, न ज्ञान है, न श्रद्धा है। केवल क्रिया ही अपने जीवन में आ चुकी हूँ और उसके माध्यम से हम धर्म कर रहे हों तो केवल क्रियाएं धर्म की कोटि में नहीं आती। उसके पीछे दो और लगा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, और इसके पश्चात फिर जहाँ सम्यक दर्शन और ज्ञान के आधार से चारित्र की उत्पत्ति होती है, वो चारित्र जो अंतरंग और बहिरंग के रूप से दो पहलू वाला है, बाह्य पहलू और अंतरंग पहलू। अंतरंग चारित्र समझदारी के साथ चलने का नाम है। अंतरंग से चलना ये समझदारी के साथ, विवेक के साथ होता है। अंतरंग चारित्र क्या है? समझदारी के साथ चलने की अपेक्षा रखना, ये अंतरंग चारित्र है। और जैसा समझ है वैसे ही बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से हम जो क्रियाएं करते हैं, एकाग्र करना सुनने के लिए क्रियाएं करते हैं, इधर उधर न देखें, सारभूत विषय बताया जा रहा है। जीवन बन जाए आपका ऐसा विषय सुनते समय सुन ही सकते हैं लिख नहीं सकते और लिखते समय सुन नहीं सकते, ऐसा होता है कि नहीं? क्या दोनों एक साथ आप लोग काम करते हैं? तो सुनना अच्छा है कि लिखना अच्छा है? सुनने से जीवन बनने वाला है, लिख करके रखेंगे तो लिखा हुआ वहीं रखकर लिखना पॉइंट, सुनने के पश्चात जो पॉइंट आए थे क्या कहा था इसको एक सेंटेंस में भी सारभूत लिख दिया तो आपको भविष्य में काम में आ सकता है। एक पॉइंट पर आप चल सकते हैं, एक ही पॉइंट सुनना और उसका सार निकालना और एक ही पॉइंट में लिखना, एक दो पॉइंट में क्या कहा था और अपने को कैसा चलना है, अपने को कैसा चलना है इसके लिए एक आध पॉइंट लिख दो कि आप भविष्य में ऐसा चलना है। पकड़ लिया सारी बात, विषय सार निकाल लिया और एक दो पॉइंट लिख दिया, ये चलने योग्य है और ये करने योग्य है। चलने और करने के लिए तो लिख रहे हैं, क्या खाली नोटबुक भरना है इसलिए लिख रहे नहीं है। चलना है जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में और श्रद्धा की तरक्की में, सम्यक चारित्र की तरक्की में जो कारणीभूत जिनेन्द्र भगवान की वाणी है उसको एक पॉइंट टू पॉइंट टू लिख दिया तो भी वह अपना जीवन बन सकता है। कॉपी और कॉपी में रहने वाले विषय काम में आने वाले नहीं हैं। हमको जितनी समझ आई, समझ जागृत हुआ जीवन में, वह काम में आने वाला है। अतः सुनने में जितना आप एकाग्रता प्राप्त करेंगे, एकाग्रता रखेंगे, वो अच्छा लगेगा। लिखना तो आप घर में भी जाकर के लिख सकते हैं कुछ पॉइंट, या लिखना भी हो तो एक आध पॉइंट लिख दिया और फिर सुनने में मन को एकाग्र किया। ये हमको विकल्प रहना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो छूट न जाए। किस तरह से समझाया जा रहा है वह अपने दृष्टि से ओझल न हो जाए और हमारा कनेक्शन टूट न जाए। धारावाहिक रूप से सुनने पर पूरा विषय हासिल होता है, शुरू से अंत तक सुनने पर पूरा विषय समझ में आता है। और लिखने के लिए हमने कट किया सुनने की बात को तो फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो एक घंटे का जो समय निकाला है मुश्किल से, और जीवन भी बहुत छोटा है, छोटे जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, छोटे जीवन में सारभूत जो जैन धर्म का, जैनत्व का और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सारभूत अमृतमय वचन है उसको उतार करके शॉर्ट टाइम में और शॉर्ट जीवन में अपने को बहुत कुछ करना है, कल्याण करना है। जीवन कल्याण के लिए ही मिला है, कल्याण करना है। तो सुनने में ज़्यादा एकाग्र रहे तो बहुत अच्छा लगेगा अपने को, ताकि जो हम देते जाते हैं वो धारावाहिक रूप से आप सुने और धारावाहिक रूप से आप समझने लग जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो विषय कट हो गया, आप लिख रहे थे इसलिए। अब क्या बता रहे थे? अंतरंग, हाँ, अंतरंग चारित्र और बहिरंग चारित्र, दो प्रकार का चारित्र है। जीवन में हमने तो श्रद्धा को तो स्थान दिया है, श्रद्धा हमारे जीवन में जीवित है, पर श्रद्धा के लिए यदि ज्ञान न मिले तो श्रद्धा सही दिशा की ओर बढ़ नहीं सकती। समझ में आ रहे हैं वाक्य? श्रद्धा किसके पास नहीं है? 100% लोगों के पास धर्म के प्रति, अपने अपने इष्ट देवता के प्रति, गुरु के प्रति ऐसा एक ज्ञान प्रदायक शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो जरूर होती है, श्रद्धा के बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती, पर श्रद्धा आने मात्र से धर्म की शुरुआत होती है ऐसा भी नहीं। श्रद्धा दो तरह की होती है, क्योंकि श्रद्धा दो तरह की है, एक सम्यक श्रद्धा और एक मिथ्या श्रद्धा। इसमें कौन सा अनिवार्य है आत्मकल्याण के लिए? सम्यक श्रद्धा अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रद्धा को सम्यक तो सम्यक रूप देने के लिए या उसको सही दिशा देने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान अपने जीवन में आया तो मिथ्या श्रद्धा हटेगी, सम्यक श्रद्धा का जागरण होगा, और ये दोनों आ गए तो किधर बढ़ने के लिए हम फुर्सत हो गए? चारित्र की ओर, आचरण की ओर बढ़ने के लिए फुर्सत हो गए। जब तक श्रद्धा सही नहीं होती तब तक चारित्र की ओर बढ़ नहीं सकते। और श्रद्धा को समीचीन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अपन सभी ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं, ज्ञान के बिना चारित्र का जागरण नहीं होता, और ज्ञान के बिना श्रद्धा की समीचीनता नहीं हो पाती। इसलिए ज्ञान लेने हेतु, ज्ञान संपादन हेतु अपन सब बैठे हैं। सच्चा ज्ञान मिल रहा है ना? विश्वास होता है ना कि महाराज जो बोल रहे हैं वो सच्चा है, और जिनवानी का खरो उपदेश है? और इसमें और भी अपन को क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं कि ऐसा बोला था लेकिन ये पॉइंट, ये बिंदु, ये शब्द, ये अर्थ यदि समझ में कहीं नहीं आ पा रहा हो तो उसको शंका समाधान के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। दोपहर को आके शंका समाधान ले, यानी टाइम में जब आप फुर्सत में रहते हैं और अपन फुर्सत में रहते हैं तब आकर के शंका समाधान कर सकते हैं। पर एक ध्येय रखो कि अपने को जो कुछ भी करना है थोड़ा भले ही करना है अपने जीवन में, धर्म को थोड़ा परमाणु के बराबर भी, पर वो कैसा हो? प्योर हो, फिल्टर हो, अमृत हो, उसमें मिक्सिंग ना हो, एक बूंद मिले पीने को अमृत, पर कैसा हो? प्योर रहे, ओरिजिनल रहे, रहे फिल्टर रहे, ये अपेक्षा रखो, ये ध्येय रखो, और इससे हमारा अवश्य कल्याण होगा। एक जिनवानी का एक अमृतमय बूंद भी कल्याणकारी है, वो उतने प्रमाण में आपको हित करेगा, सुख पहुंचाएगा, आपके लिए वह अमृतमय सिद्ध होगा। तो उतना उतना करना है, और करने के लिए कभी भी अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखना है। चारों ओर से हम स्वतंत्र, किसी से बंधे हुए नहीं। जैसी जिनवानी है वैसा अपना जीवन है, चाहे वो बिंदु के बराबर हो, चाहे सिंधु के बराबर हो, चाहे नदी के बराबर हो, सिंधु नदी के बराबर, और सिंधु यानी समुद्र, समुद्र के बराबर भी हो, हम चलेंगे तो उतना ही चलेंगे जो सही है, सच्चा है, अमृतमय है। अमृतमय एक बिंदु की श्रद्धा, अमृतमय एक बिंदु का ज्ञान, अमृतमय एक बिंदु का आचरण, क्या इससे मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी? यहीं से स्टार्ट होती है ना। एक बिंदु भी आ गया तो दूसरे बिंदु मिलने की संभावना बनती है, फिर तीसरे बिंदु मिलने की संभावना बनती है, संभावना बढ़ती जाती है, और हमारी रुचि आचरण जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसा वैसा हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तीनों शब्दों के साथ एक शब्द जोड़ दिया है, सम्यक। श्रद्धा कैसा होना? सम्यक। क्यों जोड़ दिया? तो मिथ्या श्रद्धा तो अनादि से है, सम्यक श्रद्धा, तो इसका मतलब हमारा हमारी जो श्रद्धा है वो सम्यक नहीं है, अनादिकाल से नहीं था, इसलिए ये जोड़ना पड़ा। संसार में जितने अनंत संसारी प्राणी हैं, क्या सबके पास सम्यक श्रद्धा है? तो कौन सी श्रद्धा है? मिथ्या श्रद्धा है। मिथ्या श्रद्धा अनादि निधन है अपने पास, और उसी मिथ्या श्रद्धा को ही हटाने के लिए समीचीन ज्ञान को लेना पड़ता है, फिर वस्तु स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये सही है और ये सही नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट ज्ञान होने पर ज्ञान हमारा यानी जीवानी का ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होता है, यानी मिथ्या श्रद्धा छुड़ाने के लिए भी जीवानी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आवश्यक होता है। अब शास्त्र ज्ञान कह करके अपन जिस किसी शास्त्र को शास्त्र नहीं समझ सकते, क्योंकि शास्त्र अनेक प्रकार के लिखे गए, इसलिए उन शास्त्रों को भी शोधना पड़ेगा, ये कौन शोधे, कौन सा शास्त्र सही और कौन सा शास्त्र गलत कैसे पहचाने, इसका क्या उपाय। तो इसके लिए न्याय का आलंबन लिया जाता है, तो उसके लिए गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु न्याय करके बताएंगे, न्याय कौन करेंगे? गुरु ही कर सकते हैं। गुरु के कोर्ट में जाना पड़ेगा, गुरु का कोर्ट, सम्यक ज्ञान का कोर्ट, फिर गुरु कहेंगे ये सही है, क्यों सही है इसको भी सिद्ध करके बताएंगे, और ये सही नहीं है कैसे सही नहीं है उसके भी कारण बताएंगे। तो दोनों के कारण बताने पर आपको सही दिशा बोध गुरु के माध्यम से मिलता है और सही ज्ञान मिलता है। तो सही क्या है ये बिंदु इकट्ठे करना, और गलत क्या है और क्यों है ये बिंदुओं को इकट्ठा करना, और उसमें तोल करके, नाप तोल करके उसको सही रास्ते पर ले करके चलना, ये एक आत्म कल्याणार्थी को आवश्यक होता है। तो अगले बिंदुओं को पढ़ते हैं अपन, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है ये। पहला पढ़ा था आत्म कल्याण करने के लिए धर्म करना चाहिए, धर्म आत्म कल्याण के लिए होता है, सांसारिक सुखोपलब्धि का साधन नहीं होता, संसार सुख धर्म करने वाले जीव को उसकी मन की पवित्रता से और निष्काम भाव के प्रभाव से संपादित पुण्य के उदय में स्वतः प्राप्त होता है। संसार सुख कैसे प्राप्त होता है बता रहे हैं। धर्म करने वाले जीव को संसार सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलता होता तो संसार में कोई धर्म ही नहीं करते, दोनों मिलते हैं, इसलिए धर्म करते हैं। अगर आपसे कहा जाए धर्म करने से संसार सुख मिलने वाला ही नहीं, ऐसा विश्वास जगाया जाए, तो कोई मंदिर नहीं आएंगे, कोई देवदर्शन नहीं करेंगे, जिनवाणी का अध्ययन करने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। तो धर्म से अगर संसार सुख नहीं मिलता है तो धर्म क्यों करे, ऐसा कहेंगे। पर जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, धर्म करने से ही दोनों सुख मिलते हैं, संसार सुख भी और आत्मिक सुख भी। पहला कौन सा मिलता है? आत्मिक सुख। जिनको आत्मिक सुख मिलना प्रारंभ हो गया उनको संसार सुख बिन मांगे मिलता है, ये विश्वास रखो। रखोगे विश्वास? आपको विश्वास के जगाने के लिए मुझे समय लगेगा। एक एक आत्मा ऐसी है कि कहीं ना कहीं अटका हुआ है, किसी न किसी बिंदु को लेकर, शंका को लेकर अटका हुआ रहता है। तो उसके पीछे एक सम्यक ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, और वहाँ से उसको ऊपर उठाने के लिए बार बार हैमरिंग करना पड़ता है, टाइम लगता है। मतलब ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, क्योंकि रोग ही अनादि है। तो फिर आप सोचिए कि इस अनादिकालीन रोग को ठीक करने के लिए समय तो चाहिए पड़ेगा ना। उसके दिल में जितने प्रश्न हैं वो प्रश्नों का उत्तर मिले, और फिर वो विचारक होकर गलत को, अश्रद्धा मिथ्या श्रद्धा को हटा करके, गलत की मिथ्या श्रद्धा को हटा कर समीचीन मिथ्या श्रद्धा पर आ जाएं, इसके लिए समय तो लगेगा। जितने प्रश्न होते हैं वो प्रश्न खाली हुए बिना आप सम्यक रास्ते पर चल ही नहीं सकते, चलना चाहे तो नहीं चल सकते जब तक शंकाएं हैं। तो अपने दिमाग में जितनी शंकाएं होती हैं सब लिख के रखो, एक डायरी बना लो। पुस्तक इसलिए दिया है, नोटबुक, नोटबुक इससे मत भरो कि पुस्तक में जैसा है वैसा लिख दिया और भर के रखा, प्रश्नों से भर जाए वो। हर प्रश्न का उत्तर अपन जिनवाणी से ढूंढेंगे, जिनेंद्र भगवान के वाणी के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में हम जैनत्व को एक जागृत कराएंगे, ऐसा काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा ना। वो जीवन कैसा लगेगा जिस समय हम सारे प्रश्नों का निरसन लेकर, उत्तर लेकर, समझदार होकर, समझदारी से धर्म कार्य करने लगे, वो कैसा लगेगा उस दिन। एक नया जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा, उसी में आनंद है। अन्यथा शेष जीवन में तो रूखा सूखा है, कुछ भी नहीं है। आप करते रहो, करोड़ों भवों में करोड़ों बार भी ऐसे धर्म, अज्ञानपूर्ण धर्म करोगे तो कुछ सार निकलने वाला नहीं है। ये जैन धर्म ऐसा है, जो जागृत है उसी के जीवन में जीवित हो सकता है, जो वैचारिक दृष्टिकोण से इसके पीछे लगा हुआ है उसी के जीवन में आने वाला है, अन्यथा ये सामान्य जीवों का धर्म नहीं है। सामान्य जीव भले ही अनुकरणवादी बन करके भव भवों में करते रहे, लेकिन सार निचोड़ कुछ भी उससे नहीं निकलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में वैचारिक दृष्टिकोण को अपना करके इसको हासिल कर लेना, इस जैन धर्म को, यह आवश्यक है। क्योंकि यहाँ कदम कदम पर सोचना पड़ता है, क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये प्रतिक्षण सोचना पड़ता है। ऐसा है अपना जैन धर्म, प्योर है, शुद्ध है, फिल्टर है, तीन लोक में एकमात्र यही अमृत है। इसको छोड़कर बाकी जो है ना, बहुत शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं का निरसन उनके स्वयं के पास नहीं रहता। तो जिन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है वहां शंका ही रह जाती फिर, कि सही या गलत फिर ये रास्ता। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बिल्कुल सही दिशा की ओर आत्मा को ले जाता है, और आत्मा को उभय सुखी बनाता है। उभय सुखी, उभय यानी धर्म की अपेक्षा से भी सुखी और संसार के अपेक्षा से भी सुखी। संसार के अपेक्षा से ये इतना उच्च स्थान पर ले जा करके रखेगा कि चक्रवर्ती बना देगा, और धर्म में इतना उच्च स्थान पर ले जाकर रखेगा उसको सिद्ध परमात्मा बना देगा। इतना अच्छा धर्म है, पर इसका ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, बहुत जरूरी है। तो वही प्रयास अपन करने बैठे हैं। यदि अपना जीवन वैचारिक बन जाए तो अमृत सिद्ध हुआ, और जैसा का तैसा रह जाए तो कोटस्थ रहा, तटस्थ रहा। तो दिमाग को आगे बढ़ाना है, दिमाग को तेज बढ़ाना, तेज करना है। इतनी शंकाएं होने लग जाएं, शंका करना दोषपूर्ण नहीं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म पर शंका नहीं करना चाहिए, मिथ्यात्व का दोष आता है, संशय नहीं करना चाहिए। शंका, संशय, प्रश्न, ये सब करना गलत है क्या? वही नहीं करेंगे तो फिर मिथ्या श्रद्धा हटेगी कैसे और सम्यक श्रद्धा होगी कैसे? तो संशय, श्रद्धा इत्यादि ये हानिकारक नहीं है, अविश्वास हानिकारक है। कौन सा हानिकारक है? अविश्वास। विश्वास ही न होना हानिकारक है। ये कहा है कि धर्म पर विश्वास रखो, अविश्वास मत रखो, इतना कहा है। प्रश्न मत करो, श्रद्धा मत करो, उस पर ज्यादा विचार मत करो, ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। श्रद्धा रखो ये कहा है, विश्वास रखो ये कहा है। विश्वास के साथ जो श्रद्धा होता है वो सम्यक दर्शन है। और फिर इसके पश्चात जितने भी आप उसको गहराई से सुनने समझने के लिए अपेक्षा रखते हैं और प्रश्न उठाते हैं, ये प्रश्न उठाना, तर्क करना, ये अविश्वास वाला काम नहीं है। ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। ज्ञान और बढ़ाएं इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। तो प्रश्न उठाना गलत है क्या? ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न उठा रहे हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही है। वो काम ही ज्यादा करना चाहिए। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो क्या भरना है नोटबुक? प्रश्नों से भरना है। और जिस दिन आप इतने प्रश्न भर करके रखेंगे, हम ये सभी पढ़ाई थोड़ा रुक करके शंका समाधान के लिए शुरू करेंगे। सुबह शाम शंकाओं का ही समाधान हो रहा है, ठीक है? प्रश्न निकालो। और ये जो पढ़ाई हो रही है, इस पढ़ाई के पश्चात थोड़ा घर में जाकर के ये भी प्रयास करना है कि जो पढ़ाई हुई है उसमें हमको शंका क्या क्या उठ रही है और इन शंकाओं का निरसन करने के लिए हम क्या करें, तो लिख के रखें पहले। क्योंकि एक प्रश्न याद नहीं रहता, तो जितने जितने प्रश्न उठ गए उनको लिखते जाना। लिखते लिखते इकट्ठा करना और फिर किसी दिन जब समय आएगा उनको पूछा भी जा सकता है। तो ऐसा करके आगे बढ़ना है। देखो, एक ध्यान में रखना है, अनुकरणवादी नहीं बनना है, देखा देखी धर्म नहीं करना। हाँ, खाना देखा देखी खाते हो क्या? कि वो जलेबी खा रहा है तो मैं भी जलेबी खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। वो दाल खा रहा है, भात खा रहा है तो मैं भी दाल भात ही खाऊंगा, जलेबी वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा अनुकरण क्यों नहीं करते? अपने पसंद की चीज लेकर के भोजन करते हैं। हम संसार के कार्यों में कहीं भी अनुकरणवादी नहीं है, पर धर्म में सबसे ज्यादा अनुकरणवादी है। जो दूसरा करता है उसको करना, उसको सोच समझ करके, तुलना करके, सही है भाई सही, वो सही है कि गलत है, इस प्रकार उसको छानबीन करके, जरा अच्छा है कौन सा इसमें, बुरा कौन सा, ये बुरा अच्छा है भी नहीं है भी क्या नहीं, ऐसा सोचते नहीं है। वो जो कर रहा है वैसा करना। फिर ये क्या है, भेड़ चाल होती है। एक भेड़ गया तो पीछे के 10 और गए, उस 10 को देख करके और 100 गए। भेड़ चाल कहते हैं इसको हिंदी में, भेड़ चाल। मराठी मध्ये काय म्हणतात मला माहित नाही। काय म्हणतात मराठी मध्ये? मेंढी, मेंढी चाल। मेंढी चाल ठीक, मेंढी चाल नहीं करना है। पढ़ते हैं, धर्म करते हुए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। धर्म करते हुए संसार सुख की इच्छा करना आवश्यक नहीं है। क्या पढ़ लिया और क्या ग्रहण करना, कैसे चलना, तुरंत तुरंत सोचते भी जाना है। क्या कहा इसमें? धर्म करते हुए संसार सुख की इच्छा करना, और अभी तक हमने क्या आवश्यक समझा? धर्म करते हुए सांसारिक सुख इच्छा करना आवश्यक है, नहीं तो मिलेगा कैसे, ऐसा ही समझा है। हाँ, क्योंकि हम इतने स्वार्थी थे कि धर्म से भी हम कहते थे, भगवान से भी कहते थे और गुरु से भी कहते थे, आपको दान दिया और हमको संसार सुख मिले, ये कैसा, इधर हम देंगे इधर मिलना चाहिए, एक हाथ से हम देंगे और दूसरे हाथ से हमको हाथ में आना चाहिए कि हाँ दे दिया। तो तुरंत मिलेगा क्या? मिल भी सकता, ये भी चमत्कार है, नहीं है ऐसा नहीं, एक हाथ से दिया और एक हाथ से इधर चमत्कार हुआ, पर उतनी विशुद्धि तो चाहिए। मानतुंग आचार्य इधर भक्तामर पढ़ते चले गए और इधर ताले टूटते चले गए, हुआ कि नहीं हुआ? ये किसका फल है? पुण्य का ही फल है ना, ये पुण्य का ही चमत्कार है ना। अगर वो पुण्य ना होता तो क्या ताले टूटते? भक्तामर पढ़ा, ये भी हो सकता था, भक्तामर पूरा पढ़ लिया और एक घंटे बाद सारे ताले टूट गए, एक घंटे बाद, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? पर मानुतुंग आचार्य की मन की विशुद्धि इतनी तीव्र थी, इतनी ऊंचाई पर थी, कि इधर पढ़ते चले गए और उधर ताले टूटते चले गए। इस पर विश्वास रखोगे कि नहीं ताले टूटे थे? क्या ऐसा ही लिखा होगा किसी ने, टूटे थे कि नहीं टूटे थे क्या मालूम, टूट सकते हैं, यदि नहीं भी टूटे थे समझ लो, टूट सकते हैं कि नहीं, सिद्धांत क्या है, टूट सकते हैं। एक कोई कवि हैं जिनका नाम धनंजय कवि, उन्होंने भी भगवान की भक्ति की पूजा किया, पूजा कर रहे थे तो उनके घर में उनके पुत्र को सांप ने काट खाया। बताते हैं कि सांप काट खाने के उपरांत तुरंत लोग भागे और वो मंदिर में जाकर के पूजन कर रहा था, जाकर के उनको कहा कि आपके पुत्र को सांप ने काट खाया और आपको पूजन छोड़कर जाना अनिवार्य है। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उधर काटा है तो काटा है, सभी अपने अपने पुण्य पाप के खिलौने हैं, सभी जीव पुण्य पाप के खिलौने हैं, पुण्य पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, अगर बचना है बचेगा, नहीं बचना है नहीं बचेगा, कर्माधीन है सभी संसारी प्राणी। उधर ध्यान न देते हुए उन्होंने उस पूजन में मन लगाया, पूजन अष्टक, देखो अपन भी अष्टक करते हैं, कैसा करते हैं, मन बाजार में आता जाता रहता है और हमारा पूजन शुरू रहता है, यहाँ अष्टक कर रहा था और बिल्कुल इतने विशुद्ध परिणाम थे कि उधर ध्यान ही नहीं दिया उनको, कुछ भी मतलब मन में हाँ ऐसा हुआ, अनिष्ट हुआ या संकलेश परिणाम हुआ, मोह जागृत होगा, पुत्र के प्रति मोह जागृत हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भगवान के भक्ति में पूजन में मन एकाग्र किया और विशुद्धि बढ़ाई, तो जैसे ही उनकी विशुद्धि बढ़ गई, बढ़ती चली गई, उधर जहर उतर गया, जहर उतरता चला गया, यानी आपके पूजन में नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो उस नमोकार मंत्र में, भक्तामर पढ़ रहे हो तो उस भक्तामर में इतनी ताकत है कि असंभव कार्य को भी संभव करा सकता है वो। पर सिर्फ आवश्यकता इस बात की होती है कि हम सब कुछ दिमाग से खाली होकर, मन से खाली होकर उस पूजन में एकाग्र करने की जरूरत है। मोहित नहीं होना, मन को शांत बनाना और विशुद्धि को बढ़ाना। विशुद्धि यानी क्या? मन की पवित्रता, निर्मलता, आनंद अवस्था। आनंद अवस्था को और बढ़ाते जाना। कोई बात सुन लिया तो खेद खिन्न नहीं होना, और दुगुनित आनंद और बढ़ना चाहिए। वो आनंद दुपट्टा और बढ़ेगा, दोपट्टा होगा, तो फिर अतिशय घटित होगा बाहर। इधर विशुद्धि बढ़ाते जाओ, उधर अतिशय घटता जाएगा। ये घटना मानतुंग आचार्य के जीवन में घटित हुई, धनंजय कवि के जीवन में घटित हुआ। ऐसा एकाद आज के जमाने में, एकाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा कहीं घटित हुआ? आपके जीवन में ऐसा कोई उदाहरण है, घटना है, जो आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ हो? मैंने ऐसा किया और ऐसा तुरंत हुआ, कोई उदाहरण? नहीं है। यदि नहीं है तो इसमें हमारी क्या कमी रही? विशुद्धि की कमी रही। विशुद्धि कम क्यों रही, ये प्रश्न उठता है। विशुद्धि क्यों कम रही हमारी? तो हम क्या करते हैं, कामना को मन में रख के जाते हैं। एक तो घर से ही निकलते समय पहला से ठहराव रहता है कि सोमवार के दिन जाना है। पहला से ही ठहराव ही रहता है वो, और सोमवार सोमवार ही जाना है। मंगलवार के दिन विशुद्धि भी हो तो नहीं जाना, पर सोमवार के दिन कामना को लेकर जरूर जाना है। तो हम इस टाइप का धर्म कर रहे हैं तो कैसे उसकी फल की प्रतीक्षा कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना है। जब देखें तब मन खाली मिलना चाहिए, साफ सुथरा। देखो आदिनाथ मंदिर में जाकर के, यहाँ नीचे जब चाहे जब आकर के देखो, मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है। कितना स्वच्छ है, फर्श भी इतने अच्छे हैं, वेदी इतनी अच्छी बनी है, बिल्कुल साफ सुथरा। जब कभी एक कचरा भी, थोड़ा सा भी गंदा नहीं है मंदिर। जब आकर के देखो तब मंदिर, बाहर का मंदिर इतना हम स्वच्छ रख सकते हैं, भीतर के मंदिर को गंदा क्यों हम रखें? भीतर आत्मा का मंदिर, उसको भी उतना ही स्वच्छ रखना चाहिए ना। जब हम अंक में छे तब निर्मल मिलना चाहिए। अपने आप में शांत, शांति मिलना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भीतर के मंदिर के कचरे हैं। ये कचरा गुरगिरा हुआ रहता है तो झाड़ू लगाना पड़ता है। क्रोध, मान, माया, लोभ पर झाड़ू लगाना, फिर ये कचरा उसमें भर करके फेंक देंगे तो फिर स्वच्छ मिलेगा भीतर का मंदिर। भगवान के पास मंदिर में जाने से पहले अपने मन के मंदिर को साफ रखना आवश्यक होता है। झाड़ू कहाँ लगाना? मंदिर आने का जब भी विचार हुआ तो क्रोध, मान, माया, लोभ पर झाड़ू लगाओ और फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर पूजा सामग्री जुटाओ, सामग्री जुटाओ और जाओ। वहां जाते समय शुद्ध भावना से प्रवेश करो, शुद्ध भावों से मंदिर में प्रवेश करो। मंदिर में जाने के पश्चात भगवान को वीतराग भाव से देखो। कामना के भाव से नहीं, दुखों के भाव से नहीं, शुद्ध वीतराग मंत्र शांत भाव से प्रसन्न होकर के देखो भगवान को, तो इस समय वो पुण्यकर्म बनता है जो तत्काल फल देने वाला है। अपन क्या चाहते हैं, इधर मंदिर होके आए और इधर फल मिले, और ऐसे साल भर करते हैं, जीवन भर करते हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो धर्म झूठा है, भगवान झूठे हैं, मंदिर सब झूठे हैं। इस हाँ, धर्म पर से विश्वास हटा करके मन बिगाड़ करके और डबल मलिन हो जाते हैं, कितने लोग चाहिए ऐसे, तो धर्म पर विश्वास नहीं रखते क्योंकि कर करके देखते हैं कुछ मिलता नहीं, तो उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ऐसे कितने लोग हैं, है कि नहीं, दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए वो नास्तिक बन जाते हैं। जब धर्म पर भी से विश्वास उड़ गया तो नास्तिक बन गए। तो ऐसा स्वयं के अज्ञान के कारण से स्वयं गलती करेंगे और धर्म के ऊपर से विश्वास उठा करके चलेंगे तो क्या सुखी हो पाएंगे। चलो धर्म पर से विश्वास उठ गया और अपन खूब सारा नास्तिक हो गए, और नास्तिक होने के पश्चात अपने को सुख मिलेगा, छोड़ दिया और इस मार्ग से अब आप सुखी बनेंगे, संभव है? नास्तिक बनने वाले व्यक्ति को इधर कुछ, इधर नास्तिक बना और इधर सुख मिलना शुरू हो गया, ऐसा कोई है दुनिया में? अगर नास्तिक बनने से सुख मिलता हो, मिल गया होता ना, मिलना होता, तो फिर कोई धार्मिक न बनता दुनिया में। तो एक एक चीजें बहुत विचार करने की योग्य हैं, अपन को कहीं अटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और सच्चाई को पाते जाना है। मंदिर आना है तो जाने से पहले मंदिर कैसे जाऊं, ये प्रश्न उठना है, उठाना है, किस प्रकार से जाऊं, कैसा होना मुझे आवश्यक है। मन से सोचो और मन से पहले बन जाओ, मन से सोचो, मन से पहले जैसा बनना चाहिए बन जाओ। पूजन की थाली हाथ में आते ही मन को कामना से खाली करना है, यह आवश्यक है। नहीं मिले तो झगड़ा नहीं करना ऐसा। मन में, हाथ में पूजन की थाली आते ही, क्योंकि आप अभी तक संसार के कार्यों में उलझे थे, उसमें क्रोध मान माया लोभ संक्लेश वो संयोग वियोग की बातें थी, संसार की बातें थी, ये सब अशुभ है। मन अशुभ, वचन अशुभ, काया अशुभ, ये सूतक है आत्मा के लिए। मन का अशुभ, मन का सूतक, वचन का अशुभ, वचन बोलना, वचन का सूतक, और काया से सांसारिक कार्य करना सदा, ये काया का सूतक। सूतक है कि नहीं, इसको सूतक समझोगी कि नहीं समझोगी? ये निरंतर चलने वाला सूतक है, ये कभी छूटता नहीं। संसार में, संसार के कार्यों में उलझ गए कि सूतक लग गया, और मंदिर आ गए कि सूतक से मुक्त हो गए। पर यहां पर आने के बाद भी हम सूतक से मुक्त न हो पाए तो फायदा क्या है? यहां आए, मन की कामना को लेकर के भगवान के पास आए, और भगवान कहते हैं कि सातिशय पुण्य को तुम्हारी झोली झोली में मैं डालना चाहता हूं, पर झोली में क्या रखा हुआ है? सूतक पड़ा हुआ है और सूत की झोली और उसमें भी सूतक। इस झोली में सूतक पड़ा हुआ है, इस सूतक को बाहर निकालो कहते हैं। तब सातिशय पुण्य को भगवान उसमें डालेंगे। भगवान डालते हैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, ऑटोमेटिक भगवान के मंदिर में आने पर झरता है, झोली भर जाती है। सातिशय पुण्य का झरना झरता है, झोली भर जाती है और हम मालोमाल हो जाते हैं और तुरंत उसका परिणाम देख सकते हैं घर में जाते ही। जिसका मन सदा शुद्ध है, कामना से रहित है, उसको दुनिया में कोई भी सुख मांगने लायक नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, वह सदा सुखी है। भौतिक सांसारिक सुख से भी संपन्न है और परमार्थ की दृष्टिकोण से भी सदा सुखी होता है। सदा करने योग्य कार्य क्या है? सदा सतत प्रतिक्षण करने योग्य कार्य है तो वो क्या है? मन को शुद्ध रख करके चलना, ये सदा करने योग्य कार्य है। ये लिख के रखो, हम परमिशन देते हैं, कोई बात नहीं। ये सभी शास्त्रों का, करोड़ शास्त्रों का एक ही वाक्य में सार है। आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, संसार से भी और परमार्थ से भी, आत्मा से भी और संसार से भी, दोनों से संपन्न बनना चाहते हैं, तो एक ही वाक्य लिखो, सदा मन से कषाय मुक्त रहना। सदा मन से कषाय मुक्त रहना, कामना मुक्त रहना और मन को, मन की शुद्धि को बनाए रखना। मन की शुद्धि को बनाए रखना, हो गया? उधर होने पर ही इधर छोड़ना पड़ता है नहीं ये बांध का पानी आगे जाएगा और आप पीछे हैं। मन को कैसे रख के चलना, ये शिक्षा मिल गई। गुरु की शिक्षा और भगवान के सूत्र, ये दोनों हमारे जीवन के आत्मकल्याण के लिए अमृत हैं। एक एक वाक्य को जीवन बनाने का प्रयास करना है। बैठे बैठे श्रावकार बन जाओगे, चिंता मत करो, बैठे बैठे ही काम है ये। पुण्य को करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता, मन से होता है। तीर्थ यात्रा करो, शरीर से भी कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। मन से यात्रा किया, मान लो समय शिखर होके आ गए, घूम करके आ गए और वंदना की, पर इससे पहले तो एक बार होके आना पड़ता है, नहीं तो मन में भी कैसे आएगा एक बार तो शरीर से जाना पड़ता है, बार बार नहीं जाना पड़ता। मन से आपने मान लो एक घंटे बैठ करके सामायिक भी किया, मन सामायिक में बैठ करके समय शिखर की यात्रा की, क्या पुण्य बंद नहीं हुआ? उस ध्यानावस्था में मन की पवित्रता इतनी अधिक रहती है, मन की विशुद्धि, कि उससे सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध उसी टाइम में होता है। जो ध्यान में, ध्यान के काल में प्योर पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, अन्य किसी समय में नहीं होता। क्यों? अन्य समय का, समय का जो पुण्य है वो प्रवृत्ति परक है, प्रवृत्ति के काल में बंधता है, और जो ध्यान के काल में बंधता है वो बिल्कुल शांत अवस्था, निष्कषाय अवस्था, परम पवित्र पावन अवस्था, उस वक्त जो पुण्य बनता है वो अलग ही रहता है। मानतुंग आचार्य ध्यान में बैठ करके स्तोत्र किया, लिख नहीं रहे थे उस समय भक्तामर, श्लोक नहीं बना रहे थे, शांत बैठ गए, श्लोक बनाने में मन लगाया और भगवान के गुणों का चिंतन साथ साथ हो रहा था। एक तरफ गुणों का चिंतन और मन में मन की विशुद्धि पवित्रता, अत्यधिक बढ़ाते हुए काम किया तो सारे ताले टूट गए। मैना सुंदरी का भी यही हुआ था, पर लोग आज गलत समझते हैं उसको, जैसे उन्होंने किया था वैसा तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मैना सुंदरी ने इसलिए किया था इसलिए मिला, तो ये भी इसलिए करते हैं इसलिए मिलेगा, प्रतीक्षा करते रहते हैं। नहीं, ये बहुत भ्रम है इसमें, बहुत सारे भ्रम हैं इस संबंध में लोगों को। मैना सुंदरी ने इसलिए किया था इसलिए हम भी इसलिए कर रहे हैं, तो सीधा ही कामना को लेकर के कर रहे हैं। इनके मन में कामना शुरू से ही है। और मैना सुंदरी को गुरु ने क्या समझाया और उन्होंने कैसा किया, ये किसी को ज्ञान नहीं। मैना सुंदरी ने क्या समझाया था आपको मालूम है? शास्त्र में है ये सब लिखा हुआ, पर आप पढ़ते कहाँ हैं? आप इतना ही पकड़ लेते हैं। लोगों से पूछते हम, आपने क्यों किया? हाँ, मैना सुंदरी ने किया था इसलिए हमने किया। तो इससे क्या होता है? तो इसलिए, इससे मेरे पति का संकट दूर होता है इसलिए कर रही हूँ, ऐसा? तो इससे प्रभावित हो गए, अनुकरण किया, तो मैं भी करूँ, इनके मन में भी आया, ये भी करने लग गई। ऐसे एक एक करके अनुकरणवादी बनते हैं और अनुकरण से उतनी ही बात पकड़ लेते हैं जो सबसे पहला कर रहा था। पर शास्त्रों में जाकर के अगर विचार करके हम देखेंगे कि मैना सुंदरी को उस मुनि महाराज ने क्या समझाया था, कैसा आशीर्वाद दिया था और क्या भावना लेकर के वो कर रही थी, कैसे उस उनके मन के भाव थे, ये जानने का प्रयास नहीं करते। हमको टाइम भी कहाँ है इतना, है ना? हमको टाइम इतना नहीं है, आप ये बताओ, हम ये करते हैं, हम मशीन होना चाहते हैं, मानव नहीं होना चाहते, मशीन बनकर काम करना चाहते हैं, धर्म के कार्य को भी हम मशीनवत करना चाहते हैं, टाइम नहीं है। आप शुच दबाव, हम शुरू हो जाते हैं और मेरा काम बन जाए, ऐसा नहीं होता। धर्म कभी भी मशीनवत बनकर काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल मशीन मतलब मानव मशीन भी बना है, तो उसको रोबोट बोलते हैं। शुच दबाव तो सारा काम करके दे देता है वो, लेकिन आत्मा का ध्यान करो मोक्ष मिलेगा कहने से वो ध्यान ही नहीं करता। और रोबोट को मोक्ष मिलेगा क्या? मनुष्यवत कोई भी काम करवाओ कर लेगा, गला भी दबाओ तो गला भी दबा देगा। पर रोबोट अगर गला दबा रहा है, एक बात और ध्यान रखना, रोबोट अगर गला दबा रहा है तो पाप कर्म उनको बंद होगा क्या? रोबोट का शुच दबाया उनको बंद होगा? रोबोट को जिसने तैयार किया, शुच दबाया, उनको तो पाप कर्म का बंद हो रहा है, रोबोट तो निरपराधी है। अगर मान लो केस हो जाए तो इन पर केस होगा क्या? रोबोट को जेल में डालेंगे? मान के चलो रोबोट को ले जाकर जेल में डाल दिया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न सुख है न दुख है, सुख दुख की अनुभूति तो रोबोट को नहीं है, क्योंकि रोबोट में आत्मा नहीं है। काम सभी करता है, मशीन है वो, आत्मा नहीं, मानव नहीं। मानव का आकार जरूर दिया है, हाथ है, पांव है, सब कुछ है, दौड़ता भी है, सारे काम करता है, घर के रोटी बना देगा, दाल पकाएगा, भोजन कराओ कहने से आपको कराएगा भी, पर ये सभी सेटिंग है, उसके सॉफ्टवेयर हैं, उसमें जो जो प्रोग्राम भरा है वैसा काम वो करके दे देगा। मशीन मशीन है, उसमें आत्मा को भर नहीं सकते। उसी मशीन के भीतर एक आत्मा को जान डाल दो, देखेंगे हो सकता है क्या? मशीन बनाकर उसमें एक आत्मा को भी डाल दो, ये आज ये कभी होगा ही नहीं, ये न भूदो न भविष्यति। तो अपन को रोबोट नहीं बनना है, अनुकरण नहीं करना है, किसी का अनुकरण करके धर्म नहीं करना, सोचना है, समझना है, सोच समझ करके धर्म करना है। सोच समझ कर धर्म करने वाले को ही विशुद्धि बढ़ सकती है, सच्चा रास्ता मिल सकता है। तो ये धर्म करते हुए संसार सुख की इच्छा करना आवश्यक नहीं है। हाँ, मैना सुंदरी का बता रहे थे, गुरु ने क्या समझाया था? देखिए आप, गुरु ने समझाया ये सभी संसार में रहने वाले संसारी प्राणी पुण्य और पाप के फल को अवश्य भोगते हैं। जो संकट आते हैं पाप के उदय से आते हैं, जो संकट टलते हैं पुण्य के उदय से टलते हैं। ये कोई दूसरा देता लेता नहीं है। मैं आपके पाप कर्म को दूर करने के लिए कुछ करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा यदि संभव होता तो मैं ध्यान में बैठता और आपको मोक्ष मिल जाए। आप भी बैठो और मैं भी बैठता हूं, आप ध्यान मत करना, मैं ध्यान करता हूं, मोक्ष आपको मिले पहले, बाद में मुझे मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो तीर्थंकर भगवान बहुत करुणालु थे, दयालु थे, वो सबको बिठा करके पहले आपको भेज देते, फिर बाद में वो स्वयं जाते। पर जो भी आज तक मोक्ष गया है, स्वयं के पुरुषार्थ से गया है या दूसरे के पुरुषार्थ से गया? स्वयं के पुरुषार्थ से गया। ये अपना काम है और अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। तो मैना सुंदरी ने ये समझाया था, मैना सुंदरी को मुनि महाराज ने ये समझाया था कि ये पुण्य पाप का खेल है, इसमें हमारा पुरुषार्थ इतना ही हो सकता है कि पाप कर्म की निर्जरा हो और पुण्य कर्म का बंद हो और पूर्व पुण्य कर्म में उत्कर्षण हो, जो पहले बंधा हुआ है उसमें तरक्की हो, उत्कर्षण हो, और वर्तमान का और बंद हो, और पूर्व में बंधा हुआ पाप कर्म निर्जरा को प्राप्त हो, नष्ट हो, और नया पाप कर्म जो बंध सकता है उसके लिए रोकथाम हो। ये चार विधि समझाई। तो उन दंपतियों ने हाथ जोड़कर मुनि महाराज से ये पूछा कि फिर इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मन को कामनाओं से पहले मुक्त करो। अच्छा ठीक है, कामनाओं से हम मुक्त करते हैं, फिर मन को बिल्कुल पवित्र रखो, कामना को मत आने दो, और संकट जो आया हुआ है इस पर ध्यान जाए या न जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मन में कामना न जगाते हुए सिद्ध चक्र का विधान करो। कितना पॉइंट टू पॉइंट समझाया था और ऐसा ही किया। जैसा भी तुरंत सुख मिल सकता है उनको, वो मार्ग समझाया या ऐसा वैसा समझा दिया, जैसा भी तुरंत सुख मिल सकता है वैसा वो मार्ग समझाया। कि क्या बताया? मन में कामना न रखते हुए विशुद्धि को बढ़ाओ, और विशुद्धि बढ़ाओगे तो इधर पाप पूर्व पाप कर्मों की निर्जरा होगी, वर्तमान में आने वाले पाप कर्म पर बंधन पड़ेगा, रोकथाम होगा, और पूर्व में बंधे हुए पुण्य में उत्कर्षण होगा, और वर्तमान में बंधने वाले पुण्य कर्म अत्यंत प्योर क्वालिटी के बंधेंगे, क्योंकि मन पवित्र है, कामना से मुक्त है, मलिनता से दूर है, इसलिए उत्कृष्ट पुण्य कर्म का बंध होगा। तो वैसा सिद्ध चक्र विधान करते समय 8 दिन तक, कितना दिन किया मालूम नहीं है, 1 दिन भी कर सकते हैं और 8 दिन में भी कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र रहते हैं और सिद्ध भगवान के गुणगान करते हैं, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। पर जितना भी समय तक उन्होंने किया तो मन को कामना से मुक्त रख करके किया, इसलिए वो चमत्कार घटित हुआ, उनके लिए गंधोदक अमृत बन गया, औषधि बन गई, और जिस पर भी उन्होंने छिड़काया मस्तक पर उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। और आप क्या करते हैं, कामना से करते हैं, 10 दिन करते हैं और 11वें दिन प्रतीक्षा करते हैं, गंधोदक लगा करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है कैसा जाएगा, आपके पुण्य में ताकत नहीं आया, कामना थी 8 दिन तक, अब पुण्य में पवित्रता जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी, और ये कैसा होगा। ऐसा प्रयोग करके देखो, अब शुरू करो, देखेंगे क्या होता है। कोई संकट आया ना, उस संकट को ध्यान में रखो, कोई बात नहीं, संकट को दुखड़े को देव शास्त्र गुरु के सामने व्यक्त करना ये बुरी बात नहीं है, करो व्यक्त, पर उस संकट मुक्ति के लिए क्या करना, वो काम सच्चा काम वो करो जैसा करना चाहिए, विधि पूर्वक वो काम सही करो, आप गलत मत करो, गलती मत करो उसमें। तो गारंटी, हम गारंटी देते हैं, ऐसा कोई भी संकट आए आपके जीवन में, जैसे कि अपने घर में धन की कमी है, पुत्र नहीं है, शादी नहीं हो रही है, ये सभी संसार के संकट है कि नहीं, ये सब समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं की पूर्ति धर्म से ही होती है। पर धर्म किसका नाम, कामना मुक्त मन का नाम धर्म है या कामना सहित मन का नाम धर्म है? हाँ, तो इतना ध्यान रखो, मेन बात है, ये मेन पॉइंट है, कामना से कुछ काम करना ही नहीं, ये तो संकल्प लो, पहले लोगे लो, फिर लो लो लो, टाइम हो गया, लो कामना मुक्त ही करेंगे, जो भी करेंगे कामना मुक्त होके करेंगे, कामना मुक्त होकर करेंगे, किसी से कुछ मांगना नहीं, और मन की पवित्रता, मन अगर आपका वीतराग है और कर रहे हैं तो एक हाथ से करो एक हाथ से लो, ऐसे ऐसा धर्म है ये। आप भटक रहे हैं, आप दौड़ते हैं सोमवार को निश्चित करते हैं, यानी सोमवार के दिन ही मिलता हूँ, शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं मिलता, वहाँ दुकान बंद रहती, मतलब भगवान की, और कुछ भी करके हम अपना रास्ता बना लिया है। ये सब मूर्ताएं हैं, लोक मूर्ता कहलाती है, ये लोक मूर्ता है। सोमवार ही क्यों जाते हैं आप मंगलवार क्यों नहीं जाते, शनिवार क्यों नहीं जाते, कि शनिवार के दिन आदिनाथ बाबा का दुकान बंद रहता है, आप किसी भी दिन जाओ वहां पर तो 24 घंटा दुकान खुला हुआ है, रात में जाओ, रात को 12 बजे भी जाओ तो दुकान खुला हुआ है, आदिनाथ भगवान का धर्म का दुकान तो कभी बंद होती ही नहीं, पर कैसा जाना ये अपने हाथ में है, मन को कामना से मुक्त करके जाना। संकट तो आपके जीवन में आए हैं, ध्येय में रखो, ध्यान में रखो, इनको दूर करना भी है, आपको करना है, पर कामना को छोड़ो, और ये विश्वास रखो, कामना छोड़कर मैं सच्चा भक्ति करूंगा, समर्पित होकर के विश्वास के साथ करूंगा, तो मुझे पुण्य का फल मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास रखो। पर कर्म ध्यान रखना, कर्म परीक्षा भी करता है, पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है ना, अशुभ कर्म, ये परीक्षा भी करते हैं, वो कर्म क्या परीक्षा वो करते हैं ऐसा नहीं, वो कर्म क्या है कि वो उनकी ताकत जो अशुभ फल देने लायक जो ताकत होती है वो ताकत यदि घटी नहीं है तो फिर आपको जल्दी मिलने वाला भी नहीं है, और यदि घट गई है तो तुरंत मिलेगी आपको। पर इसमें हम थोड़ा सा चंचल हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा ही किया करके देखा और नहीं मिला, तो फिर धर्म के ऊपर से विश्वास उड़ने की भी संभावना बनती है। ऐसा नहीं करना, जब भी सुख मिलता है मन की पवित्रता रूप जो धर्म है उसी से मिलता है, कामना से मलिनता से मन को खराब करने से सुख मिलता है ऐसा तो है ही नहीं। आपको तो इसी पर विश्वास रखना पड़ेगा, तो ऐसा विश्वास रख करके चलना। टाइम बहुत हो गया, आगे बढ़ाएंगे कल दोपहर का। हाँ बता, हाँ बता।